हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपक कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्रीअद्वैतगदाधर श्रीवासदिगौरभक्तवृन्द, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री वृंदावन धाम की जय हो। तो आप सबका श्री वृंदावन धाम में हार्दिक स्वागत है। भगवान के पूरे निर्माण में, पूरे सृष्टि के निर्माण में भगवान को पृथ्वी लोक बहुत पसंद है, और पृथ्वी लोक में भगवान को भारतवर्ष बहुत पसंद है। इसलिए वो भारतवर्ष में अनेक अवतार लेते हैं और उनके संत भी यहाँ पर अवतार लेते हैं। जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं आप सब जानते हैं भारतवर्ष में ही हुए हैं, और जितने भी संत हुए हैं वो सब भारतवर्ष में हुए हैं। और भारतवर्ष में उनको मथुरा मंडल बहुत पसंद है, इसलिए उन्होंने उनमें जन्म लिया है। जन्म वहाँ का मथुरा का है, मथुरा मंडल कहते हैं उसको, मथुरा मंडल। अभी हम लोग मथुरा मंडल में बैठे हैं, यानी ये जो पूरा 84 कोस का एरिया है उसको मथुरा मंडल कहा गया है, या वृंदावन धाम भी कह सकते हैं उसको। तो मथुरा मंडल में 137 प्रमुख वन है। वैसे तो अनंत वन है लेकिन 137 प्रमुख वन है जिसमें भगवान लीला करते हैं। उन 137 वनों में 12 वन उसमें भी प्रमुख हैं। उन 12 वनों में से 5 वन जो है वो जमुना जी के पश्चिम दिशा में है, और 7 वन जमुना जी के पूर्व दिशा में, बीच में जमुना बहती है, मथुरा मंडल के बीच जमुना बहती है। तो वो भगवान के विशेष वन है, उसमें भगवान ने विशेष लीलाएं की है। लेकिन 12 वनों में भगवान को श्री वृंदावन बहुत पसंद है। ये पूरे क्षेत्र का नाम भी वृंदावन है, लेकिन उसमें वृंदावन नाम का एक वन भी है। तो इस वृंदावन में बहुत अनोखी बात ऐसी है कि इसमें भूमि वृंदावन तो है ही, साथ में गोवर्धन और यमुना जी इसमें विराजमान है। का कारण क्या है कि जब भगवान ने निर्णय लिया कि हम अवतार लेंगे, तो भूमि गाय बन के गई थी भगवान के पास। ब्रह्मा जी उनको ले गए थे देवताओं के साथ, और भूमि रो रही थी कि मुझ पर असत्य और पाप का भार बढ़ रहा है, तो मैं नहीं सह सकती। मैं तो कितना भी भार सह सकती हूँ लेकिन असत्य और पाप का भार नहीं सह सकती, मेरे लिए असह्य हो रहा है, रो रही थी। तो ब्रह्मा जी उनको लेकर विष्णु जी के पास गए, और भगवान ने दर्शन दे के बताया कि चिंता मत करना, मैं आऊँगा, अवतार लूँगा, पृथ्वी पर आऊँगा और अवतार लूँगा। तो भगवान के साथ राधा रानी खड़ी थी, तो राधा रानी सुनकर बेहोश हो गई। तो भगवान ने उनको फिर सावधान किया और पूछा, क्या बात है, आपने बेहोश क्यों हो गए आप? वो कहते हैं कि मैं अभी देख रही हूँ कि आप जाने वाले हो, मुझे विरह होगा आपका, इसलिए मैं दुखी हूँ। तो कहते हैं, आपने ऐसे कैसे सोच लिया कि मैं आपको छोड़ के जाऊँगा, मैं तो आपको सांप के लिए जाऊँगा। तो वो कहती है कि जहाँ वृंदावन नहीं है, जहाँ गिरी गोवर्धन नहीं है, जहाँ पर जमुना नहीं है, वहाँ पर मैं नहीं आ सकती। तो वो कहते हैं कि आपका मन जानते हुए मैंने पहले से ही पृथ्वी पर हमारे गौलोक धाम का 84 कोस का हिस्सा गोवर्धन और जमुना जी के साथ भेज दिया है, क्योंकि मैं आपके हृदय को जानता हूँ कि आपके हृदय में वृंदावन जमुना गोवर्धन के लिए कितना प्रेम है। तो इसके कारण राधा रानी यहाँ पर आनी चाहिए मेरे साथ, ये सोचकर भगवान ने पहले से ही अपने दिव्य धाम का 84 कोस का हिस्सा जो है वो पृथ्वी पर प्रस्तापित किया। उसको क्या कहते हैं, भौम वृंदावन। भौम ये शब्द भूमि से निकला हुआ है, जो भूमि देवी पृथ्वी पर जो स्थापन किया गया है उसको भौम वृंदावन कहते हैं। तो ये वृंदावन जो है ये भगवान को अति प्रिय है, ये भगवान का निज धाम है। और धाम और तीर्थ में अंतर होता है। धाम उसको कहते हैं जो भगवान का मूल घर है, उसको धाम कहते हैं। और तीर्थ उसको कहते हैं जो धाम से निकल कर कहीं और जाकर कुछ लीला करते हैं, उसको तीर्थ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अयोध्या भगवान राम का धाम है, लेकिन नासिक तीर्थ है, क्योंकि भगवान अपने धाम से निकले और वनवास करते करते वो आ गए नासिक में। आगे भी गए, साउथ इंडिया भी गए, हम्पी भी गए, बहुत जगह गए, वो सारे तीर्थ हो गए। लेकिन जहाँ जन्म हुआ, जहाँ उनका निवास है, वो अयोध्या जी उनका धाम है। और ऊपर भी अयोध्या लोक है दिव्य लोक में, वो दिव्य लोक नीचे अवतरित होता है, वो भी भौम अयोध्या हो गई। लेकिन ये जहाँ हम आए हैं ये धाम है। और ये हमारे भारतवर्ष में चार धाम बहुत प्रसिद्ध है ना, आप जानते हैं। पश्चिम में द्वारका धाम है, पूर्व में जगन्नाथपुरी धाम है, साउथ में रामेश्वर धाम है, और ऊपर क्या है, बद्रीनाथ। वहाँ पर भी चार है, लेकिन वो चारों को एक ही कहा गया है। ये चारों की अपनी विशेषताएं हैं। एक में भगवान तपस्या करते हैं, बद्रीनाथ में नरनारायण ऋषि के रूप में वहाँ अवतार लेते हैं। द्वारका में राज्य करते हैं, राजा बनते हैं, द्वारकाधीश। और नीचे जब सोने का दिल करता है तो नीचे जाते हैं। साउथ इंडिया में आप देखेंगे तो सब विश्राम कर रहे हैं, सोने की पोजीशन में है ना, श्रीरंगम, आदिकेशव, अनंत पद्मनाभ सब सोए हुए हैं। तो जब विश्राम करने का मन आता है उनका तो वो साउथ में जाते हैं। और जब भोजन करने का मन आता है तो कहाँ जाते हैं, जगन्नाथपुरी। 56 भोग दिन भर खाते रहते हैं, जब बनता है तब खाते रहते हैं दिन भर। लेकिन जब खेलने का मन करता है तो कहाँ आते हैं, श्री वृंदावन में आते हैं। और इसकी विशेषता है कि चारों धाम में वो भगवान के रूप में जाते हैं। जब द्वारकाधीश सब जानते हैं कि भगवान है ये, जगन्नाथ को भी जानते हैं जगन्नाथ है, श्रीरंगम में रंगनाथ जी है वो भी भगवान के रूप में है, बद्रीनाथ उधर नर नारायण ऋषि के रूप में भी भगवान के रूप में रहते हैं। लेकिन यहाँ जब आते हैं तो अपने भगवान का पोजिशन छोड़ के आते हैं। जैसे आप जब घर आते हो तो डॉक्टर बन के आते हो क्या, नहीं, वो तो किसी के पिता बनकर आते हो, किसी के हस्बैंड बनकर आते हो, किसी के पुत्र बनकर आते हो। डॉक्टर की टोपी उतार के आते हैं हम घर पे, दवाखाने में रख के आते हैं टोपी, घर पे लेके नहीं आते। घर पे तो दवाखाने में तो डॉक्टर साहब, घर पे बच्चा कंधे पे चढ़ेगा, सर पे भी चढ़ेगा, है ना। और आपको भी अच्छा लगता है, अरे मैं घर पे थोड़ी डॉक्टर हूँ, प्रधानमंत्री भी घर पे आएगा तो उसका बच्चा सर पे चढ़ेगा उसके। तो वो भाव का अनुभव करने के लिए भगवान यहाँ पर अपनी भगवत्ता को छोड़ के आते हैं। इस भूमि में भगवान को कोई जानता नहीं है, भगवान है करके वो कोई कहता है मेरा दोस्त है, कोई कहता है मेरा बॉयफ्रेंड है, कोई कहता है मेरा पुत्र है, कोई कहता है गाय कहता है मेरा ग्वाला है, इसी रूप में जानते हैं। कोई यहाँ पर जानता नहीं कि भगवान भगवान है, और इसीलिए उनको यहाँ पर ज़्यादा आनंद आता है। जैसे समझो कोई अमेरिका का प्रेसिडेंट है, समझो उसको वेकेशन एंजॉय करना है तो कहाँ जाएगा वो, जहाँ कोई जानता नहीं उसको वहाँ जाएगा वो, ताकि वो खुलेआम घूम सकता है, उधर शॉपिंग कर सकता है, कुछ मोजे खरीद सकता है, कुछ फल खरीद सकता है। अब अपना तेंदुलकर है जो भारत में इतना फेमस है, वो उसका अगर छुट्टी मनानी है तो वो कहीं ऐसा जगह जाएगा जहाँ पर क्रिकेट कोई खेलता नहीं है ना, नोबडी नोज क्रिकेट देयर। तो वहाँ जाके वो अच्छे घूमेगा, अच्छी तरह से शॉपिंग, मतलब कुछ सॉक्स खरीदेगा, स्वेटर खरीदेगा, कपड़े खरीदेगा, खुलेआम घूमेगा, कोई जानता नहीं उसको। लेकिन एंजॉय अपना सारा जो वलय है, वलय वो वलय को छोड़कर आराम से रह सकता है। उसी तरह से अपने सारे वलयों को छोड़कर भगवान यहाँ आना चाहते हैं, इसलिए भूमि विशेष भूमि है। भगवान भगवान होते हुए भी अपना सारा ऐश्वर्य छोड़कर आते हैं। वो कहते हैं कि वैकुंठ का ऐश्वर्य जो है ना, वो छोड़कर मैं यहाँ पर गोपियों का माखन चुराने के लिए आता हूँ। अभी थोड़ा सा आपको बताता हूँ वैष्णव वैकुंठ का ऐश्वर्य क्या है। लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी देवी, उसका नारायण के साथ में एक बार ऐसा झूठ मूठ का प्रेम का झगड़ा हुआ था। उस झगड़े में उसका एक कंगन टूटा, तो उसने ऐसे ही झूठ मूठ के गुस्से में उसको टूटे हुए कंगन को फेंक दिया उठा के। ऐसे होता है ना, कभी गुस्से में फेंक देते। तो वो टूटे हुए कंगन पे ये पूरी दुनिया का इकोनॉमिक्स चल रहा है। सर आप इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर है ना, आप हैं आप, सॉरी सर। वो लक्ष्मी देवी के टूटे हुए एक कंगन के ऊपर ये पूरे ब्रह्मांड का अर्थव्यवस्था चल रही है, और ऐसे उसके ऊपर बहुत कंगन है एक ही लक्ष्मी के ऊपर, यहाँ भी और यहाँ पर भी है, गले में और अलंकार है, हाँ बिंदी भी लगाती है वो, कान में कुंडल पहनती है, कमर में काचनी पहनती है, पांव में घुंघरू पहनती है, हाथ में अंगूठियां पहनती है, ऐसे बहुत सारे अलंकार उस शरीर पर है। और ऐसे लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमान, ऐसे अनंत कोटि लक्ष्मियां भगवान की सेवा में रहती है, तो कितना ऐश्वर्य होगा आप सोच सकते हैं, वैकुंठ में कितना ऐश्वर्य होगा। और वो एक वैकुंठ की बात कर रहे हैं हम, ऐसे ब्रह्म ज्योति के अंदर अनंत वैकुंठ है जिसमें एक एक विष्णु का स्वरूप जो है वो नियंत्रण करता है, वो स्वामी है एक एक वैकुंठ का। ऐसे अनंत जो वैकुंठ के इस नाथ हैं, वहाँ की सारी जितनी ऐश्वर्य है वो सब छोड़ के भगवान यहाँ पर आते हैं। क्यों आते हैं? गोपियों का माखन चुराने के लिए, क्योंकि उसमें उनका प्रेम है, उस प्रेम की खोज में सब ऐश्वर्य छोड़ कर आते हैं। डांट भी खाते हैं माँ की, गोपियाँ भी डांटती हैं उनको, ग्वाल बाल भी डांटते हैं, अभी हार रहे हो तो अभी आदमी तुम भाभी हार के समय भाग रहे हो, अभी कल खेलने को नहीं लेंगे आपको, डर जाते हैं वो। सारा जो ब्रह्मांड है, जितना जितने ब्रह्मांड बनाए हैं उसमें सब लोग यमराज को डरते हैं, यमराज भगवान से डरते हैं, मतलब मूर्तिमान भय जो है वो भगवान से भयभीत है। और वो जो भगवान जिस सबसे भयभीत लोग भयभीत है उनसे, वो माँ की डंडे से डरते हैं यहाँ पर, क्योंकि प्रेम है यहाँ पर, है ना। जो सब जिनसे सब विश्व डरता है वो माँ के डंडे से डर जाते हैं। आकाश में गड़गड़ होती है, तुरंत यशोदा की गोद में भाग जाते हैं वो। ये लीला यहाँ पर होती है विशेषता से। और ये जो वृंदावन है, ये जो टोटल धाम है वो 84 कोस का है, लेकिन वृंदा का जो वन है वो 20 कोस का है। आजकल ज्योग्राफिकल जो वृंदावन आप आए हैं ना, वो छोटा सा है, वो तो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अभी आगे गएंगे, दूर जाएंगे 2 किलोमीटर तो वो छठिकर आएगा, वो वृंदावन समाप्त हो जाएगा, वो तो अपना आज का भौगोलिक वृंदावन है। लेकिन जो पौराणिक वृंदावन है वो 20 कोस का है, उसके अंदर गोवर्धन भी आता है, उसके अंदर जमुना भी आती है, उसके अंदर नंदगांव भी आता है, और बरसाना भी आता है, और जावट भी आता है, जो आज के कैलकुलेशन से यहाँ से 50 किलोमीटर दूर तक है, इतना क्षेत्र वृंदावन धाम में आता है। और वो वृंदावन 12 वनों में से भगवान को अति प्रिय है। इसकी कई कहानियाँ हैं, इसमें वृंदावन नाम क्यों पड़ा, एक पौराणिक काल में पुराणों में कथा आती है उसकी, ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा आती है। राजा केदार नाम का बड़ा धर्मशील राजा था, उसकी ये कन्या थी वृंदा नाम की, वृंदा, उसने कड़ी तपस्या की इस क्षेत्र में बैठकर, और हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद में उसको राधा और कृष्ण की कृपा से गोपी का शरीर प्राप्त हुआ, वो गोपी बन गई, भगवान की प्रिय गोपी बन गई, वृंदा गोपी। तो उसके ऊपर ये नाम पड़ा है वृंदावन, ये एक कारण हो गया। दूसरे कारण ये उसका कि 2 भाई थे, धर्मध्वज और कुशध्वज। धर्मध्वज की कन्या का नाम था वेदवती, और आपने सुना होगा रामायण में वेदवती का नाम आता है, वेदवती तपस्या किया उसने, और तपस्या करके राम जी पति बने, मतलब वो तपस्या करके अगले जन्म में सीता बनी, और प्रभु रामचंद्र उनके पति बने, तो प्रभु की प्राप्ति की उन्होंने। और जो कुशध्वज की कन्या थी वृंदा देवी, उसको भी नारायण के पति की होने की इच्छा थी, लेकिन उसने कुछ अपराध किया तो दुर्वासा ने उसको शाप दिया, तो कृष्ण का अंश शंखचूड़ राक्षस जो था वो कृष्ण का अंश है, सीतामा जो भगवान के सखा हैं उनका अंश है, वो पति के रूप में प्राप्त हुए। तो बड़ी लंबी कथा है उनकी, शालिग्राम शिला के रूप में भगवान उत्पन्न हुए, और वृंदा देवी को शाप मिला कि वो पौधा बनेगी, तो वो हमारा जो प्लांट है तुलसी प्लांट बनकर आई वो पृथ्वी पर, तो वो वृंदा के नाम से भी ये वृंदावन प्रसिद्ध है। तीसरा कारण यह है कि यहाँ पर राधा रानी के 16 नाम हैं, उसमें एक नाम वृंदा भी है उनका, और राधा रानी का ये वन है, उसने वृंदा देवी के प्रेम की वजह से भगवान के साथ वृंदा देवी का विवाह किया, और विवाह में अपना वृंदावन उसको भेंट में दे दिया, इसलिए भी उसका नाम वृंदावन है। राधा के नाम से भी प्रसिद्ध है, वृंदा देवी के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो ये वन जो है, यहाँ भगवान ने सबसे पहले रास रचाया, रास को शुरू करने के लिए भगवान ने वृंदावन को चुना। वैसे तो रास उसके बाद में उन्होंने हर वन में किया है, हर हर गली गली में किया है, लेकिन शुरुआत जो किया था शरद ऋतु में, 1-7 साल की उम्र में शरद ऋतु जब आया तो शरद पूर्णिमा के दिन उन्होंने रास रचाया, तो वृंदावन में रचाया। वो वृंदावन में एक बंसी वट है, जहाँ पर भगवान ने वट के वृक्ष पर बैठकर बंसी बजाई थी, और उस बंसी बीच रात में सुनकर गोपियाँ भाव विभोर हो गई थी, और सब कुछ त्याग करके वो बीच रात में भगवान को मिलने आई थी, उनको आनंद देने के लिए। और फिर भगवान ने जीव के लिए जो सर्वोच्च आनंद प्राप्त हो सकता है, जीव जिस आनंद को चाहता है और वो सर्वोच्च मात्रा में वो आनंद जो प्राप्त हो सकता है वो भगवान जीव को रास में देते हैं। रासलीला कोई ऐरे गेरे का ऐसे लड़के लड़कियों का खेल नहीं है, जैसा हम देखते हैं आजकल के दुनिया में नवरात्रि में क्या होता है, वो उसका विकृत स्वरूप है। सत्य जो है वो बहुत परमोच्च है और पवित्र है, परम पवित्र है। उसका विकृत स्वरूप जो है वो हम आज देखते हैं, लेकिन परम पवित्र स्वरूप में क्या उसका अंडरस्टैंडिंग है कि भगवान और जीव के बीच में सर्वोच्च आनंद का अनुभव रास में होता है, और भगवान भी अपने भक्त को सर्वोच्च प्रेम में आनंद जो है वो रास के माध्यम से जीव को देते हैं। तो वो रास लीला जो है, वो सर्वोच्च आनंद प्रकट करने वाली लीला जो है, वो भगवान ने वृंदावन में शुरू की। वो आज भी जमुना किनारा बहुत फेमस है, यहाँ पर बंसीवट का किनारा है, बंसीवट का सारा उसके जमुना जी के किनारे पे है, वहाँ पर करोड़ों गोपियाँ एकत्र हुई थी और रास रचाया था। तो ऐसा ही वृंदावन धाम है, इसकी महिमा अगाध है, ये प्रेम और रस से भरा हुआ है और जीव जिस आनंद को तड़पते रहता है वो आनंद यहाँ प्राप्त होता है। हम लोग सब लोग आनंद के भूखे हैं। मुझे बंद कर दीजिए इसको प्लीज़ आप। तो जीव जो है वो आनंदमय अभ्यासात है, हमारा स्वरूप है सच्चिदानंद। हम सब लोग आनंद के भोगता हैं, एवरीबडी इज वर्किंग हार्ड फॉर हैप्पीनेस। सब लोग आनंद के लिए मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, परिवार बनाते हैं, विवाह करते हैं, समुदाय बढ़ाते हैं, जाति धर्म जो भी हमारा जो सिस्टम है वो सब आनंद की खोज में बनाया हुआ है। सारी मेहनत आनंद के लिए है क्योंकि हमारा स्वरूप आनंदमय है और हम भगवान के अंश हैं। भगवान भी आनंद घन हैं, आनंद के सागर हैं। तो वो आनंद हमें चाहिए, लेकिन हमने भगवान को छोड़ दिया है, इसलिए हम लोग इस दुनिया में आए हैं, शरीर धारण किया हम लोग ने, और ये शरीर जो यहाँ का है वो मरने वाला शरीर है, रोग प्राप्त करने वाला शरीर है, बीमार होने वाला शरीर है। इसमें कोई संदेह है किसी को? हाँ, हम लोग डॉक्टर हैं सब लोग, हम लोग ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, अलग अलग ब्रांचेस में किया है, लेकिन क्या हम लोग बुढ़ापा रोक पाते हैं? क्या हम लोग बीमारी रोक पाते हैं? इलाज करते हैं दूसरी बीमारी आ जाती है, एक बार करते हैं दूसरी बार वही एंटीबायोटिक देना पड़ता है, वही URTI होता है ना? क्या हम जन्म की वेदना को टाल सकते हैं? क्या हम मृत्यु की वेदना को टाल सकते हैं? मृत्यु को टाल सकते हैं? नहीं। साइंटिस्ट लोग बहुत वादा करते हैं कि एक दिन आएगा हम मृत्यु पर विजय पाएंगे, ऐसा वैक्सीन देंगे आपको कोई मृत्यु नहीं होगी लेकिन जिसने ऐसा वादा किया तो उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो ये मृत्यु का लोक है, इसका नाम ही मृत्यु लोक है, जहां मृत्यु प्रधान घटना है। एक कॉमन निश्चित और प्रधान घटना यहाँ की क्या है? मृत्यु। लेकिन हम लोग यहाँ पर आनंद की खोज में आते हैं तो खोज आनंद नहीं मिलता है हमको, क्योंकि हम गलत जगह पर आनंद ढूंढ रहे हैं। भगवान ने कहा है ना, माम उपेत्य तो कौन्तेय दुखालयम अशाश्वतम। जो मैन्युफैक्चर करता है ना, इसका जो मैन्युफैक्चरर है उसका आपका बुकलेट देगा और बताएगा इससे क्या उम्मीद करनी है। इसमें आप खाना नहीं बना सकते, इसमें आप सुन सकते हैं लगाकर, और गैस बर्नर लेके आएंगे तो उसमें खाना बना सकते हैं, लेकिन उसको माइक्रोफोन के यूज़ नहीं कर सकते, है ना? इसका मतलब जो मैन्युफैक्चरर है वो बताता है कि इसमें से क्या करना है आपको और कैसे इसका इस्तेमाल करना है, और उसी पे आप चलेंगे तो ये ठीक चलेगा। इसमें खाना बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा पता है ना इसका तो मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड वो कह रहे हैं कि दुखालयम अशाश्वतम, मैंने दुनिया जो बनाई है ये भौतिक दुनिया कहते हैं उसको, मटीरियल वर्ल्ड, इसमें दुख आलयम ये दुख का घर है और अशाश्वत है, इसमें आज जो है वो कल नहीं दिखता है। आज काले बाल देखेंगे तो कल सफ़ेद देखेंगे, आज कुछ बिल्डिंग देखेगी नहीं तो कल पुरानी हो जाएगी, वो हम भी पुराने हो जाते हैं, है ना? कभी अभी स्कूल में थे, अभी पता नहीं कभी अभी भी स्कूल थे, अभी तो 50 हो गए हमारे, ऊपर गए 50 के, है ना? तो यहाँ पर सब अशाश्वत है, सब चेंजिंग है, एवरीथिंग इज चेंजिंग हियर। तो जब मैन्युफैक्चरर बता रहे हैं कि ये करेले का झाड़ है इसमें आम नहीं बनता, तो बोले नहीं नहीं वो दाहिनी दिशा में देखा नहीं मैंने अब तक, वो दाहिनी दिशा में खोज करेंगे तो आम मिल सकता है। अरे करेले के पेड़ पे दाहिनी दिशा में जाओ, बाएं में जाओ, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, आगे जाओ, पीछे जाओ, उत्तर में जाओ, दक्षिण में जाओ, सब जगह क्या मिलेगा? करेला मिलेगा। उसी तरह से दुखालय में जाके सुख ढूंढेंगे तो किधर भी जाओ नहीं मिलेगा। तो वो जीव जो है जो सुख की खोज में है लेकिन गलत जगह सुख खोज कर रहा है, लेकिन जब वो वृंदावन धाम में आता है और भगवान से अपना लिंक बना देता है तो उसको आनंद की प्राप्ति होने लगती है। क्योंकि जहाँ आनंद है वहाँ ही आनंद मिलेगा, जहाँ आनंद नहीं आनंद कैसे मिलेगा? जहाँ पर उसकी गुंजाइश नहीं है वहाँ आप ढूंढते रहेंगे तो कैसे मिलेगा आपको? करेले के खेत में आम कैसे मिलेगा? गेहूँ के खेत में चावल कैसे मिलेगा? उसी तरह से जहां पर दुखों का निर्माण किया गया है वहां पर सुख कैसे मिलेगा। इसलिए भगवान आते हैं बार बार, संभवामी योगे योगे, हाँ, धर्म संस्थापनार्थाय परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का नाश करने के लिए, संतों की रक्षा करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। और सबसे ऊपर एक बात है, सबसे ऊंची बात है, भक्तों को सुख देने के लिए, जीव को प्रेम का सुख देने के लिए भगवान आते हैं, अपना धाम को लेके आते हैं। आप लोग अभी पुणे मुंबई से आए, अपना घर लेके आए क्या यहाँ पर? किसी एक कमरे में रह रहे हैं आप, जो आपका घर नहीं है, कुछ दिन के लिए रहने वाले हैं। लेकिन भगवान जब आते हैं तो अपना धाम ही लेके आते हैं। वृंदावनम पादम न एक गच्छति, वृंदावन के बाहर एक कदम रखते नहीं है, वो धाम ही लेके आते हैं, अपना घर ही लेके आते हैं, वहां एस्टेब्लिश करते हैं। यहां तक कि उनका विमान जो है ना, पुष्पक विमान, जब प्रभु रामचंद्र गए थे, आपको सुनकर इतना आश्चर्य होगा, उसमें पहले तो कुछ कोटि लोग चढ़ गए अयोध्या जाने के लिए, बंदर भी थे उसके अंदर, 1,70,000,000 बंदर थे उसके अंदर। और विमान निकलने का समय आया तो सब लोग उदास थे, तो प्रभु ने पूछा क्या हुआ, तो कुछ बोलने को तैयार नहीं। फिर हनुमान जी को, इनके मन में क्या है बताओ जरा, वो कहते हैं कि प्रभु रामचंद्र का राज्याभिषेक देखने हम जा रहे हैं, लेकिन अकेले जा रहे हैं, पत्नी को साथ लेके नहीं जा रहे हैं, इनको पत्नी को साथ लेके जाने की इच्छा है। तो प्रभु ने कहा ठीक है, सैंक्शनड, सब पत्नियों को ले लो। तुरंत वो पुष्पक विमान जो एक्सपांड हो गया भगवान की इच्छा से, और सारे पत्नियां भी माउंट हो गए उसके अंदर, फिर बच्चे भी माउंट हो गए, बोर्डेड द फ्लाइट कॉल्ड पुष्पक फ्रॉम लंका टू अयोध्या। और उसमें क्या, ऐसे सीट बेल्ट लगाने का नहीं होता है, ऐसे ऐसे बैठना नहीं होता है, अरे बगीचा है उसके अंदर, नदी बह रही है, पर्वत भी है, बगीचा है, उपवन है, खाने पीने की जगह है, चल भी सकते हैं आप, गा सकते हैं, नाच कर सकते हैं, हवाई जहाज में मन की गति से जा रहे हो, मन की इच्छा के अनुसार मन की गति से प्रवेश कर रहा है। और कोई वो बाहर 47 डिग्री माइनस और अंदर 23 मेंटेन किया हुआ, ऐसा नहीं है वो। आप अगर हवाई जहाज की खिड़की खोलेंगे ना, -47 होता है बाहर, वैसा नहीं है, खुली हवा है, ऐसे घूम रहे, ऐसे आकाश में जा रहे हैं। भगवान का विमान ऐसा है तो भगवान का घर कैसा रहेगा, सोचो आप। वही घर जो है भगवान यहाँ पर इस्टेब्लिश करते हैं। जीव को जो भगवान को छोड़कर सुख भोगने के लिए आया हुआ है, उसको सही सुख देने के लिए भगवान यहाँ पर आते हैं। और दोबारा बोलते हैं, आप मराठी में कैसे बोलते हो, या चिमण्यानो परत फिरा रे। तो हम लोग खोए हुए भटके हुए चिड़ियों को बोल रहे, चलो भाई घर चलो दोबारा। वैसे भगवान हम सबको बुलाने के लिए यहाँ पर आते हैं, चलो अभी कितना देर दूर रहोगे मुझसे, कितना तड़पोगे, कितना दुख भोगोगे, कितनी ठोकरें खाओगे, चलो मेरे साथ, मेरे धाम में चलो, सब तुम्हारा ही है। जैसे कोई भूला भटका होता है ना, जो अपने घर पिताजी का छोड़ के जाता है, झगड़ा करता है पिताजी से, नहीं रहूंगा आपके घर पे, एक रुपया भी नहीं लूंगा आपसे, होंगे आप बड़े अपने घर पे, मैं नहीं लूंगा, मेहनत करूंगा मैं, और जाके फिर दादर स्टेशन पे बूट पॉलिश करता है और उधर ही सोता है। तो पापा चाचा को भेजते हैं, जा भैया जाके देखे मेरा बेटा क्या कर रहे हैं, बोले वो बूट पॉलिश कर रहे हैं, मैंने बोला उसको आने के लिए, बोला नहीं आऊंगा मैं, वड़ा पाव खा के रहूंगा, बूट पॉलिश करूंगा, और वही तड़पते रहता है। पापा क्या बोलता है, अरे केवल घर पे आ जा, सब तेरा ही है, ये घर भी तेरा है, मैं मरूंगा तो प्रॉपर्टी भी तेरी है, सारा चीज तेरा ही है, क्यों बूट पॉलिश कर रहा है तू, क्यों कर रहा है? अपने अहम की वजह से पापा की सारी प्रॉपर्टी छोड़कर तड़प रहा है। लेकिन यस पापा बोलेगा तो क्या होगा, सारा प्रॉपर्टी अपना अपने आप हो जाएगा उसका, कुछ करना नहीं पड़ेगा उसको, रोटी मिलेगी, कपड़ा मिलेगा, मकान मिलेगा, आनंद मिलेगा, मजा मिलेगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप पापा का प्रॉपर्टी उसके नाम पे हो जाएगा। तो भगवान भी बोल रहे हैं, वो क्या कहते हैं शास्त्र में, मेरा धाम तुम्हारा ही है, तुम हमारे हो, धाम मेरा तुम्हारा ही है, क्यों यहाँ भटक रहे हो, सुख की खोज में, अहम के चक्र में क्यों खोज रहे हो, आ जाओ मेरे पास। तो वो ये धाम है, दिखता हमको लगेगा कहीं रास्ता अच्छा नहीं है, कहीं कीचड़ है, कोई सुअर है, कुछ गंदगी है, वो बाहरी दृश्य है, लेकिन ये भगवान का दिव्य धाम है, यहाँ भगवान निरंतर लीला करते रहते हैं, वो हमारी भौतिक आंखों को दिखाई नहीं पड़ेगा। हाँ, जैसे अभी अमेरिका में क्या चला, कुछ दिखाई पड़ता है क्या यहाँ पर? नहीं, यहाँ जाना पड़ेगा आपको, लेकिन सुनते हैं हम लोग ना कि अमेरिका में ऐसा हुआ, उधर इलेक्शन हो गया, वो नहीं आई, वो आया जीत के, सब आपको मालूम पड़ता है यहाँ पर, आप खबर सुनते हो, टीवी पर देखते हो, मोबाइल पर पढ़ते हो, अखबार में देखते हो, तो आप वहाँ गए नहीं हो, लेकिन आपको खबर मिलती रहती है उसके बारे में। उसी तरह से भगवान का धाम है, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन मिलता है शास्त्रों में, संतों के मुख से मिलता है, स्क्रिप्चर्स से मिलता है, सब वजह पता चलता है। और कारण उसका एक ही है कि भगवान हमारे सब लोगों को आनंद देना चाहते हैं, सुख देना चाहते हैं और अपना बनाना चाहते हैं। इसलिए हम लोग उनको छोड़कर भी यहाँ पर आए हैं, फिर भी वो यहाँ पर हमको वापस आते हैं। जैसे एक पापा घर छोड़कर गए बच्चे को, फिर मिलने को आते हैं, मनाने को आते हैं, चाचा को भेजते हैं, दोस्त को भेजते हैं, फ्रेंड्स को भेजते हैं, मनाते हैं बच्चे को, आ जाओ, और आके फिर आ गया बच्चा तो गले लगा देते हैं, बोलते हैं सब तुम्हारा ही है, वाई यू आर स्ट्रगलिंग सो मच। तो ये इस धाम की भूमिका है, हमको समझना जरूरी है। हम सब लोग सब मुंबई रहते हैं, पुणे रहते हैं, मद्रास रहते हैं, बेंगलोर रहते हैं, अपना अपना काम करते रहते हैं, लेकिन जिस सुख के लिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं वो कहीं प्राप्त नहीं होता है। वो तड़प जो है, वो कष्ट जो है, वो पीड़ा जो है, वो अनइजीनेस जो है ना, वो चलती रहती है। तो वो जो हमारा स्वाई भाव है, हमारा जो क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर, जो हमारा स्वभाव है आनंद का, वो यहाँ पर परिपूर्ति नहीं होती उसकी, फिर हम लोग धाम में आते हैं, संतों के संग में आते हैं, भक्तों के संग में आते हैं, फिर हमको दोबारा एक टेस्ट लगता है भगवान के लिए। फिर एक बार इसका चस्का लग गया तो दुनिया में रहते हुए आप खुश रहेंगे, क्योंकि भगवान के चरणों में जिसने आश्रय लिया है उसी को शांति प्राप्त होती है। बाकी कोई व्यक्ति यहाँ पर दुनिया में सुखी नहीं है। आप पूछेंगे हाउ आर यू सर, तो बोलेगा आई एम फाइन, लेकिन कितनी परेशानियां घर पे चलती थी फिर भी वो आई एम फाइन बोलेगा। बुखार भी आएगा ना तो डॉक्टर पूछेगा हाउ आर यू टुडे, फाइन डॉक्टर बोलता है डॉक्टर, आपको पता है अभी तक उसको 3 दिन रहना है आपके पास, एडमिट रहना है, पर आप पूछेंगे हाउ आर यू टुडे मॉर्निंग, बोले आई एम फाइन सर थैंक यू। ये हमारा रिवाज है केवल, लेकिन रिवाज खाली ऊपर का होता है, अंदर तो कष्ट सबको होते रहता है। आप छाती पर हाथ रखे देखो आप कि आपके जीवन में कितने प्रकार की समस्याएं अभी भी चल रही हैं, आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो उसको सॉल्व करने में, एक खत्म होती है तो दूसरी आ जाती है ना। हाउ मच स्ट्रगल इज देयर इन लाइफ जस्ट टू गेट लिटिल बिट ऑफ हैप्पीनेस, बट दिस प्लेस एज सून एज यू कम हियर एंड यू कनेक्ट विद द लॉर्ड, हैप्पीनेस एंड हैप्पीनेस ओनली। दैट्स व्हाई वी आर वेरी ब्लिसफुल हियर, व्हेन वी आर हियर वी आर वेरी हैप्पी, बिकॉज़ वी आर इन द लैंड ऑफ कृष्णा, हम लोग भगवान धाम, भगवान कृष्ण के धाम में हैं। तो वृंदावन धाम का जितना गौरव किया जाए उतना कम है। और यहाँ की एक विशेषता है, जैसे मैंने लिखा आपने पढ़ा होगा शायद, कि यहाँ पर कोई टिकट खरीद के नहीं आ सकता है, टिकट खरीद के आपका शरीर आएगा यहाँ पर, हाँ टिकट खरीद के आपका रूम बुक हो जाएगा, आपका खाना बुक हो जाएगा, आपका बस बुक हो जाएगा, आपका आत्मा का प्रवेश होना है यहाँ पर तो कृपा चाहिए, बिना कृपा के यहाँ पर कोई नहीं आ सकता है। और जो आता है बाकी काम करके चला, कोई बिजनेस करता है, कोई मीटिंग करता है, चला जाता है, उसको कुछ टच नहीं होता इस धाम का। इस धाम में अगर टच होना चाहिए आपका, भगवान का टच होना चाहिए, तो कृपा चाहिए उसकी। और वो कृपा करने वाले कौन है, वो भगवान की जो सहेली है राधा रानी, वो यहाँ की मिस्ट्रेस है, स्वामिनी है, उनकी कृपा के बिना यहाँ पर कोई नहीं आ सकता है। थोड़ा समझना मुश्किल है लेकिन एटलीस्ट थियोरेटिकली आप समझ सकते हो टू बिगिन विद, कि भगवान की जो शक्ति है वो भगवान से भी पावरफुल है, भगवान निर्माण करते उसको, लेकिन भगवान उस शक्ति से भी बहुत प्रेम करते हैं और शक्ति को पूरा अधिकार दे देते हैं। जैसे हमारे घर में हम खाना खा रहे हैं और पत्नी हमको आलू दम आलू पेश कर रही है और पुलाव दे रही है, बीच में क्या बोलते हैं, सुना तुमने कि वो हमारी वो नौकरानी जो है ना, उसका जो बालक है ना उसको फीस भी देना है, वो बहुत गरीब है, फीस नहीं भर पा रही है, मेरी ऐसी इच्छा है कि हम उनको फीस देना चाहिए। तो फिर वो एक दम आलू का घास मुंह में डालता है, बोलता है हाँ दे दूंगा मैं आपको, है ना, ऐसा कई बार होता है कि नहीं, प्रेम से बात करते करते वो अपना जो एक प्रस्तुत करती है अपना निवेदन और वो तुरंत पूरा हो जाता है। अगर हो सकता है उस आदमी के पास वो औरत आती थी अकेले मिलने के लिए तो शायद मना कर देता उसको, लेकिन अगर पत्नी नहीं बोला तो हो जाता काम, बोले मैडम को बताओ, मैडम बताएंगे तो सर हाँ करेंगे तुरंत उसको। ये हमारा आम अनुभव है कि नहीं, वैसे ही इस धाम में आप भगवान को पुकारेंगे ना तो शायद भगवान आपकी नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो कैसे है, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम योजना पर्युपासते, वो खाली अनन्य भक्तों को ही देखते हैं। अनन्य का मतलब क्या है, अनन्य, जिसका और कोई नहीं है, केवल वही है, एकमात्र, चार जगह पर दिल डिवाइड नहीं किया उसने इसने एक जगह पर दिल दिया है, उसी को देखते हैं खाली वो, बाकी थोड़ा एक पैर वहां पर एक पैर यहां रखने वाला आदमी को देखते भी नहीं हो घूम के। तो वो उनकी स्थिति है कि वो अनन्य भक्त चाहते हैं, उनको ही देखते हैं। हाँ, लेकिन अगर राधा रानी किसी की सिफारिश करती है तो फिर वो तुरंत उसको स्वीकार कर लेते हैं। और राधा रानी कैसे कैसे करती है, सहारा देती है और तैयार करती है उसको और फिर प्रस्तुत करती है। और राधा रानी की तरफ से प्रस्तुति आ गई अपना कैसा होता है, ट्रेन में कैसा होता है, VIP कोटा होता है कि नहीं, है ना? आपका टिकट विकेट बुक कुछ है नहीं आपके पास, लेकिन आपका कोई कॉन्टैक्ट रेलवे में है, वो VIP कोटा में आपका नाम डालता है, आपके पास एक दिन की अभी फुर्सत नहीं है और नेक्स्ट डे टिकट कन्फर्म होता है, क्योंकि वो VIP कोटे में से गया ना वो आपका टिकट, आपका वसीला है उधर। ऐसे यहाँ पर VIP कोटा है, तो राधा रानी जो बोलती है वो सब जितना चाहिए उतना VIP कोटा बन जाता है, कृष्ण की कृपा दृष्टि का लाभ होता है उस VIP कोटे के माध्यम से। तो यहाँ का ये रहस्य है, यहाँ पर कृष्ण का धाम है ये, लेकिन यहाँ पर सब लोग क्या बोलते हैं पता है, जय श्री राधे, धाम कृष्ण का है, नाम किसका लेते हैं, जय श्री राधे। आपके बेटे का नाम, बेटी का नाम क्या, बेटी का, अच्छा आपको बेटी है, आपको बेटी है, क्या नाम है, ओके समझा। अभी हमारे साथ वृंदावन में आप घूम रहे हो, हाँ, और हम चल रहे हैं, बॉब आगे जा रहे हैं, दर्शन करा रहे हैं, और कोई पीछे से पुकारता है, ए कामाक्षी, ए कामाक्षी, तो आपका नाम तो कामाक्षी नहीं है, लेकिन आप मुड़के देखोगे कि नहीं, अरे मेरी बेटी, प्रिय बेटी का नाम कौन पुकार रहा है। आपका अगर ध्यान आकर्षित करना है तो आपके प्रिय व्यक्ति का नाम पुकारेंगे तुरंत आप मुड़के देखेंगे, हो सकता है आपका नाम पुकारेंगे तो क्या ध्यान नहीं रहेगा आपका, लेकिन आपकी बेटी का और बेटे का नाम कोई पुकारेगा ना तुरंत आप पीछे मुड़के देखेंगे, देखेंगे कि नहीं, हाँ। उसी प्रकार से कृष्ण को आप पुकारेंगे शायद वो नहीं सुनेगा आपका नाम, लेकिन राधा रानी का नाम पुकारेंगे तुरंत मुड़के देखा कर राधा रानी का नाम कौन पुकार रहे हैं, जो मेरे प्रियतमा है उसको कौन पुकार रहे हैं। तो अगर कृष्ण का ध्यान आकर्षित करना है तो यहाँ का रहस्य क्या है, सब लोग जय श्री राधे 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 ऐसे पुकारते हैं, तो कृष्ण के ध्यान हमारे ऊपर तुरंत आकर्षित हो जाता है। एनीवेज वृंदावन धाम की लीला अगाध है, यहाँ का निवास अनंत पुण्यशाली है, यहाँ का कण कण प्रेम भक्ति को देने वाला है, यहाँ का जैसे अभी मैं सुबह आज स्वामी जी को लेकर यहाँ पर आया था, अभी जैसे सुंदर हवा बह रही ना ऐसे बह रही थी, तो गुरुजन और शास्त्र में लिखा है कि जब यहाँ की हवा हमारे को टच करती है तो श्री कृष्ण भगवान आलिंगन दे रहे हैं हमको, ये यहाँ का भाव है। यहाँ का पंछी जब बोलता है ना अपनी अपनी आवाज़ में बोल रहे हैं, सब भगवान को पुकार रहे हैं, हमको उनकी भाषा नहीं आती, लेकिन जिनको उनकी भाषा आती है जो शास्त्र में लिखा है वो कहते हैं कि हर एक पंछी हर एक जीव यहाँ भगवान को पुकारते रहता है, राधा रानी को पुकारते रहता है। यहाँ का रस जल जो है ना, रसों का सागर है, रसों का स्रोत है, रसमय हर चीज़ है यहाँ की। रस का मतलब होता है जो जीव को आनंद देता है, प्रेम के संबंध में आनंद देता है, उसको रस कहते हैं। तो ये रस की भूमि है, रस का सागर है, और भगवान भी स्वयं यहाँ पर रस का आस्वादन करते हैं, ऐसी भूमि है यहाँ पर। अभी हमको हम आपको एक जगह पर लेके आए हैं, इसका नाम है रामताल। शुरुआत यहाँ की, क्योंकि ये बहुत रमणीक स्थान है, देखो आपको भी आपको अनुभव भी हो रहा है, हाँ, कुछ भक्तों ने बड़े प्रेम से इसका जीर्णोद्धार किया। ये स्थान जो है वो जमीन के अंदर नष्ट हो गया था, मतलब क्या गुप्त हो गया था, उसको भक्तों ने फिर खुदवाया और ओरिजिनल कुंड जो है ना वो उसको प्रकट कराया उन्होंने। जो पहले कुंड था किसी ज़माने में हजारों साल पहले, उसकी नींव भी प्राप्त हो गई इसके अंदर, उसके आगे खोद नहीं सके, वो JCB भी तोड़ नहीं पाया उसको, इतनी मजबूत नींव है उसकी, लेकिन ज़मीन के लेवल की 15-20 फुट नीचे मिला वो खुदाई करने के बाद, मतलब वो धाम ही जमीन के अंदर लुप्त हो गया था। तो यहाँ की कथा ऐसी है कि एक सौबरी मुनि थे, आपने सुना होगा, सौबरी मुनि बहुत बहुत ही उच्च भक्त थे भगवान के, तपस्वी थे वो, और तपस्वी थे कि जमुना जी के जल के अंदर वो हजारों वर्ष तपस्या करते थे, अंदर मनुष्य होने के बावजूद भी इतना योग का बल था उनके अंदर, बड़े भगवान के भक्त थे वो। एक बार राजा मंदाता नाम का राजा था, वो उनका पुराण में वर्णन आता है, राजा मंदाता बड़ा फेमस राजा था वो, उसके ना राज्य में एक बार अकाल पड़ गया, तो बड़ा दुखी हो गया वो, तो उनको देवताओं ने आदेश दिया कि आप सौबरी मुनि के द्वारा यज्ञ कराओ तो वर्षा होगी। सौबरी मुनि को बुलाया गया जल के अंदर से मंदाता के राज्य में, उन्होंने यज्ञ किया तो वर्षा हो गई, अकाल मिट गया, वापस फिर आकर यहाँ पर तपस्या करने लगे। लेकिन क्या होता है ना, बहुत साल तपस्या किया उन्होंने, और वो जल में बहुत सारे जलचर भी थे, मछली थे, केकड़े थे, बहुत सारे जल, बड़े प्रेम से उनकी रक्षा करते थे वो, उनके शरण में थे सब लोग, सब जीव। तो गरुड़ जी आकर वो मछली खाना शुरू कर दिया उन्होंने, वो उनका भोजन है, वो आ गए अपना अपना, एवरीबडी हैज इज ओन फूड, तो खाने लगे उसको। तो सब सब मछलियों ने जाकर सौबरी मुनि का आश्रय लिया, नाग भी खाने लगे, नाग सांप वगैरह खाने लगे। तो सब नाग जो है वो शेषनाग के पास गए जो उनके सबसे बड़े भाई हैं। तो शेषनाग ने कहा कि जाओ मुनि का आश्रय करो, मुनि बहुत पावरफुल है, वो आपकी रक्षा करेंगे। तो सांप भी उनके शरण में आए, मछली भी शरण में आए। तो सौबरी मुनि ने गरुड़ को शाप दे दिया कि तुम यहाँ पर आकर लोगों को तंग कर रहे हो, उनके शांति को भंग कर रहे हो, दोबारा यहाँ पर आओगे मर जाओगे, तो शाप दे दिया उसे। तो गरुड़ जी भगवान के भक्त हैं वैसे, वो परम भक्त हैं, और मुनि का आदेश माना, उन्होंने यहाँ पर आना बंद कर दिया। लेकिन सौबरी मुनि ने भगवान के जो व्हीकल हैं, वाहन है भगवान के, परम भक्त है भगवान, भगवान उन पर सवारी करते हैं, उनका अपराध किया एक प्रकार से। तो अगली बार जब उन्होंने दो मछलियों को मिलते हुए देखा, नर मादि को, तो जिन्होंने इतने हजारों साल से वो काम भावनाओं को कंट्रोल किया था, वो एक मछली के संबंध को देखकर मोहित हो गए। पहले नहीं होता था वो, पहले तो कई अनंत बार देखा होगा उन्होंने, लेकिन तपोबल से कुछ परिणाम नहीं हुआ। लेकिन जब वैष्णव अपराध किया उन्होंने, तपोबल नष्ट हो गया उनका। एक मछली को देखकर प्रभावित हो गए और जल के बाहर आ गए, सीधे कहाँ गए, मांदादा के पास पहुंच गए। उन पर उपकार किया था ना, तो सोचा कि वही अपनी कन्या दे देंगे प्रेम से। राजा के पास गए और बोला कि आपकी कन्या से मैं विवाह करना चाहता हूँ। राजा बोले मेरा 50 कन्याएं हैं। तो इनका रूप ऐसा था ना, वो लटकती हुई चमड़ी, बुढ़ापे की वजह से बड़ी दाढ़ी और जटा, वृद्ध शरीर। तो उनको देखे कि अभी कौन लड़की शादी करेगी मेरी इससे, इतने बूढ़े आदमी से। लेकिन वो आवेश में थे तो उन्होंने कहा कि जाओ, जो लड़की आपसे हाँ बोलेगी वो उससे कर लो। हर एक लड़की बोलती मैं नहीं, तू तू नहीं, मैं नहीं तू, सब ने मना कर दिया। तब ऋषि को ध्यान में आ रही, मैं तो इतने भयंकर शरीर से यहाँ पर आया हूँ। तुरंत तपोबल से उसने अपने शरीर को राजकुमार बना दिया, और राजकुमार बनाते ही 50 कन्या बोलती मैं मेरा नंबर पहला है। तो इन्होंने कहा कि चलो होल सेल में कर देते हैं 50 लोगों के साथ। तो राजा भी बोले अभी क्या है, साधु के पीछे अभी राजकुमार बना हुआ है, तो 50 कन्या की शादी कर दी उसने। तो देखो साधु कैसे होते हैं ना, वो लगते हैं फकीर ऐसे, एकदम कफल्लक लगते हैं, लेकिन तपोबल से क्या नहीं कर सकते वो। शिव जी ने भी तो राख लगाकर स्मशान में रहते हो, एकदम कफल्लक के रूप में, लेकिन जब ससुर ने टीका किया कि तुम क्या जमाई होने के लिए योग्य नहीं हो, मैं तो प्रजापति हूँ, तुम तो ऐसे फकीर हो, तो शिव जी ने काशी बना दिया, इतना ऐश्वर्य में काशी बना दिया कि प्रजापति दक्ष भी दंग रह गया। और फिर किसी को दान कर दिया, एक दिन कोई दक्षिणा में मांग लिया तो काशी दान कर दिया। ऐसे साधु होते हैं, ऐसे भगवान के भक्त होते हैं। तो सौबरी मुनि ने यहाँ पर 50 महल बनाए और इस जगह पर नगरी बनाई 50 महलों की, और 50 कन्याओं के साथ विवाह करके पति के रूप में संसार करने लगे। उसका ऐश्वर्य देख के राजा मांदाता भी आश्चर्यचकित हो गए, मेरा पूरा राज्य में इतना ऐश्वर्य नहीं है, तो ऋषि ने 2 मिनट में बना दिया पूरा। 50 कन्याओं, हर कन्या को 100-100 पुत्र दिए उन्होंने, कितने हो गए, 5,000 तो पुत्र हो गए, 50 तो पत्नियाँ हो गई, और दास दासियाँ, दास तो अनगिनत, इतना ऐश्वर्य था। बहुत साल तक अपने प्रपंच में आनंद लिया उन्होंने। तब उनको कहीं होश आया, अरे इतना साल मैंने वेस्ट कर दिया, इतने साल तपस्या किया विरक्त होने के लिए, वो इतना साल बीच में वेस्ट हो गया। तो होश में आया तो पता चला कि मैंने गरुड़ का अपराध किया, इसलिए मेरे सब डिटूर हो गया, डिटूर मतलब कहीं रास्ता भटक गया मैं। तो फिर विरक्ति आ गई दोबारा उनको, विरक्ति आ गई तो पत्नियाँ भी पति को देखकर विरक्त हो गई, और सब पत्नियाँ और पति ने दोबारा तप किया यहाँ पर, इस जगह पर। ये भूमि आपको दिखाई पड़ रही, इतनी पवित्र भूमि है, यहाँ पर मुनि ने तप किया हुआ है, उनके पत्नियों ने तप किया है, और फिर मुनि और पत्नी दोनों ने तप करके जीवन के अंत में भगवान की प्राप्ति कर ली, यहीं से भगवान धाम में चले गए वो। तो ये तपोभूमि है, हम सब लोग इसको चिंतन मनन भजन की भूमि मानते हैं। यहाँ पर आकर भजन करने में बड़ा आनंद लगता है, क्योंकि यहाँ पर कुरान काल में किसी ने अनंत समय तक तप किया हुआ है, भजन किया है भगवान की प्राप्ति के लिए। आज भी ब्रज में आप जाएंगे किसी गांव में, बहुत सारे गांव में सौबरी मुनि के वंशज हैं, इनका गोत्र सौबरी है, सौबरी जी हाँ, और उनको काफ़ी वंशज ब्राह्मण लोग यहाँ पर हैं, कि दूर दूर तक गाँव तक है सौबरी जी के, और सौबरी जी का ब्रज का निवास बड़ा प्रसिद्ध है। तो इस पेड़ के नीचे सौबरी जी की मूर्ति को स्थापन किया है उनकी याद में, और इस जगह को अभी पुनः प्रकट किया गया है। तो क्योंकि इसमें हम लोग बैठे हुए हैं, इसकी कथा कालिया से भी जुड़ी हुई है, इसी के साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि कालिया जैसे नाग थे उसको सांप गरुड़ जी खाते थे, तो उनको भी मना कर दिया गया। तो एक दिन क्या हुआ, कालिया नाग और गरुड़ जी इनका युद्ध हुआ। अभी कालिया नाग जो है वो गरुड़ जी का भक्ष है, तो उसको खाने का प्रयास करा। तो गरुड़ कालिया भी बहुत 100 फन का बड़ा पावरफुल विषैला नाग था, कश्यप मुनि की पत्नी थी कद्रु नाम की, उसका नाग वंश में जन्म दिया उन्होंने। तो वासुकी, शेषनाग, कालिया जैसे महान नाग जो थे, तक्षक, ये सब कद्रु के पुत्र हैं, उसका वंश में आते हैं। तो कालिया और गरुड़ में भयंकर युद्ध हुआ, इतना भयंकर युद्ध हुआ कि वो युद्ध करते 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 सारे अनेक देशों में युद्ध करते 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 यहाँ पर आए। और एक समय ऐसा आया कि कालिया कमजोर हो गया, ही वॉज बिकमिंग वीक। तो उसने क्या किया, तुरंत जमुना जी का आश्रय लिया। क्यों आश्रय लिया, उसको पता था कि सौबरी ने इसको शाप दिया कि जमुना में प्रवेश करेंगे तो मर जाओगे। तो जब युद्ध में हारने का समय आया तो वो जमुना जी में छुप गया जाके, और गरुड़ ने देखा कि जमुना जी में तो जाना नहीं मुझे, तो वो गरुड़ जी छोड़ के चले गए वहां से। और कालिया ने जाकर जमुना जी में आश्रय लिया जल के अंदर। उसको कहते हैं मराठी में क्या बोलते हैं, डोह डोह, हाँ हिंदी में कहते हैं देह दह, ऐसा एक नाम है। तो उस जगह एक नदी में बहते हुए एक जगह पानी इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पर वो आगे नहीं बढ़ता है, ऐसा एक तालाब सा तैयार होता है, लेकिन वो नदी का ही हिस्सा है। वहाँ पर जाकर उसने आश्रय लिया और अपना विष सब जगह फैला दिया उसने। इतना विष फैला दिया कि जल सृष्टि जो है वो नष्ट हो गई, जितने भी मछली वछली जितने भी सब खत्म हो गए। यहाँ तक कि बाहर उसके जहाँ जहाँ जल का स्पर्श हुआ, अभी देखो नदी किनारे में बहुत पेड़ उगते हैं, क्यों उगते हैं, नदी का जल उनको प्राप्त होते रहता है, इसलिए वो अच्छे तरह से फल फूलते हैं। लेकिन ये जल लेने से सारे वृक्ष खत्म हो गए, सारी बेलियाँ जल कर राख हो गई। यहाँ तक कि वो जल के ऊपर जो बाष्प होता था ना विष का, द वेपर्स ऑफ द पॉइजन, उसमें अगर कोई पंछी आया तो पंछी भी गिरता था मर के। इस तरह से हाहाकार मचा दिया उसने। और कैसा है कालिया, हर नाग को अपने विष का अहंकार होता है, वेरी प्राउड, जो आएगा उसको डस देता है, किसी को आने देता नहीं था। वो अपनी पत्नियों के साथ में और अपने पुत्रों के साथ में जल के अंदर उसने निवास शुरू किया। तो भगवान तो भगवान है, भगवान जानते हैं कि एक एक व्यक्ति आकर सबका जीवन कष्टमय कर रहा है, उसका इलाज करना चाहिए। तो भगवान सोच रहे कैसे करें, भगवान कुछ भी काम ना लीला के साथ करते हैं, नथिंग वेरी ड्राई, एवरीथिंग इज वेरी वेरी टेस्टी एंड वेरी ब्यूटीफुल, वेरी अट्रैक्टिव। तो भगवान ने क्या किया, एक दिन यहाँ पर आए वृंदावन में, खेलते खेलते आए अपने ग्वाल बालों के साथ। लेकिन जब यहाँ पहुँचे तो ग्वाल बालों को प्यास लग रही थी, तो बोले जमुना जी का पानी पी लो। तो जमुना जी का पानी पिया, झट से सब लोग मर गए, सब लोग मृत हो गए। तो भगवान ने देखा बाप रे कितना बड़ा विष है इसका, तो उन्होंने अपने अमृतमय नज़र जो है सब पे घुमाई, सब ग्वाल बाल जीवित हो गए। उन्होंने समझा भी कि भगवान की दया से हम लोग, कृष्ण की दया से जीवित हो गए। तो फिर के लिए भगवान ने कहा चलो हम लोग गेंद खेलते, तो गेंद खेलना शुरू कर दिया। हाँ अब भगवान के मित्र हैं, श्रीदामा है, मधुमंगल है, उज्ज्वल है, सुबल है, सखा अर्जुन है, बहुत सारे मित्र हैं भगवान के, भद्र है, तोशल है, सब लोग गेंद खेलने लगे। श्रीदामा के गेंद खेल लेकर खेल रहे थे। श्रीदामा जी कौन है, राधा रानी का बड़ा भाई है, लेकिन भगवान का बड़ा अच्छा मित्र है। वो गेंद खेलने लगे, अभी आप कैसे खेलते हैं, नहीं आपसे उछालते हैं, फिर आप मेरे को उछालेंगे, फिर मैं उनको दूंगा, फिर वे उनको देंगे, ऐसे कैच कैच बच्चे लोग बहुत घंटे घंटे खेलते रहते हैं। एक समय क्या हुआ, भगवान ने श्रीदामा के गेंद भगवान के हाथ में आई, उन्होंने उसको ऐसे फेंका कि वो उसको पकड़ नहीं पाया, और पीछे जमुना जी थी, वो उसको जमुना जी से बचने के लिए उसने अपने आप को बचाया, लेकिन गेंद जमुना जी में गिर गई। श्रीदामा बोलता है कि मेरी गेंद वापस ला के दे। भगवान बोलते हैं मेरे पास और एक गेंद है, वो ले लो ना, वो गहरे पानी में कौन उतरेगा। बच्चे कैसे होते हैं, माला मादाज बॉल पाइजे बोलते ना, तोच पाइजे माला, लाल रंगा तो पाइजे, ऐसा हम लोग सब लोगों ने किया बचपन में, तीज बैट पाइजे। तो भगवान ने कहा मेरे पास और गेंद है, ले लो आप। तो बोले नहीं मुझे वही गेंद चाहिए। तो फिर क्या, ठीक है। तो ऐसे बोलते बोलते भगवान, उनको पता नहीं क्या करने वाले भगवान, वो तुरंत भगवान एक पेड़ पे चढ़ गए, ऐसे कदम्ब के पेड़ पे चढ़ गए, वहाँ पर एक पेड़ है, ऐसे मल्ल की तरह अपना फेटा निकाला और कमर पे बांधा और ऐसा ऐसा बाजुओं को ठोकते हुए, हे सीतामा तेरे गेंद लाने को जा रहा हूँ। तब सीतामा को होश आया, अरे बाप रे अभी तो ये छलांग मारेगा जमुना जी में, पता नहीं क्या हो जाएगा, तब तक छलांग मारी दिया उसने। जब छलांग मारी ना, कहते 400 हाथ पानी जमुना जी का बॉर्डर छोड़ के बाहर निकल आया। जैसे यहां तक पानी है तो 400 हाथ आगे तक बाहर उछल गया पानी और पूरा जल को अस्थिर कर दिया। तो कालिया निदृष्ट था, वो जग गया, बोला इतनी किसकी हिम्मत है, सब जीव तो मरते मेरे सामने आकर मेरा विष पाकर, और ये बालक मेरे सामने कैसे आ सकता है। तो उनके घनघोर युद्ध हुआ अंदर। बड़ा लंबा वर्णन है दशम स्कंद में उसका, भागवत में बहुत विशाल वर्णन, सुंदर वर्णन दिया है कैसे कालिया का और भगवान का युद्ध हुआ, भगवान ने कैसे उसको मुक्के मारे, कैसे कष्ट दिया। फिर उसने अपने क्या कहते हैं उसको, अपनी सेफ्टी में उसको पूरा लपेट लिया उसको और कसने लगा। भगवान ने तो छोटा रूप धारण करके भगवान निकल गए उससे। और यहाँ पर खबर पहुंची, अरे कन्हैया कूद गया, कन्हैया कूद गया। तो लोग पागल से हो गए, कहा हमने सुदामा, बोला कहा क्यों मांगी मैंने गेंद, अरे कन्हैया डूब रहा है, कालिया नाग मार डालेगा उसको, मैंने क्यों मांगी, मेरे को तो पछतावा कर रहा है। भाव विभोर हो गए सब लोग, उसमें आधे भाग गए नंदगांव की ओर मैया बाबा को बोलने के लिए कि तुम अपना बच्चा, अपना फ्रेंड जो है पानी में गिर गया। तो वहां पहुंचे तो बोल नहीं पा रहे, वो आधा आधा बोल रहे, कन्हैया कन्हैया बोल रहे, आगे दुख से बोल नहीं पा रहे। तो मैया समझ गई कुछ गड़बड़ है आज, बड़ा भाई भी साथ में नहीं गया है, वो दिन नहीं गए थे, एक अकेले कृष्ण गए थे। तो बड़ा भाई भी साथ में नहीं गया, अकेला गया है, जेल में कूद गया है, सब लोग रो रहे, क्या बात है। तो नंद बाबा यशोदा दोनों भाग गए वहां से और भाग कर नंदगांव से इधर तक आए और जल में कूदना चाहा। बलराम जी भी आ गए, बलराम जी ने कैसे कैसे करके बाबा को रोक लिया, मत जाओ मत जाओ। लड़की औरतों ने यशोदा को रोक लिया, बोले मैं जाऊंगी, अगर वो मर रहा है तो मैं भी मर जाऊंगी साथ में उसके, या तो उसको बचा के लाऊंगी। और ये कहकर उनको रोक लिया गया तो बेहोश हो गई, गिर गई उधर। सबको लगा कि कृष्ण गए, उतरे में बहुत सारा खून ऐसे जल के ऊपर आया। ऑल द मोर फियरिंग कि बाप रे किसका खून है, कृष्ण का है कि कालिया का है, मालूम नहीं। ऐसे एंग्जाइटी में उत्कंठा होने अभी के, पता नहीं कौन मर रहा है कौन जीवित हो रहा है। और प्रेम से क्या होता है ना, हमको लगता है कि मेरा मेरा बच्चा तो मिस्टर यूनिवर्स है, लेकिन चिंता तो होती ना मेरा बच्चा है, प्रेम होता है ना, प्रेम में तो सामान जहाँ तू बोलते ना, अरे मैं तो मिस्टर यूनिवर्स हूँ, क्या मुझे आप बोल रही हो, लेकिन माँ तो माँ ही है, वैसे चिंता लग सबको। उतने में कृष्ण ने छलांग लगाई और कालिया के ऊपर, सर के ऊपर आए वो, और हर एक सर जो था 100 में से विष के द्वारा एकदम टाइट था। तो जो सर नहीं झुक रहा है उस पर भगवान लत्ता प्रहार कर रहे हैं। तो जैसे ही प्रहार कर रहे हैं उसके मुख से अग्नि और विष पूरा निकल रहा है और वो ऐसा मलूल होकर नीचे जा रहा है। जो सर ऊपर खड़ा है उस पर भगवान अपना लत्ता प्रहार कर रहे हैं। अभी आप देखिए उनके पैर जो है ना, वो मक्खन जैसे मुलायम है। गोपियां रोती थी कि ये मक्खन जैसे पैर वो जमीन पर रखेंगे तो पत्थर लगेंगे, कंकड़ लगेंगे, कांटे लगेंगे, कितना कष्ट होगा, ऐसे सोचकर वो घर पर रोती थी। इतने कोमल हाथ लगाए तो कोमल, ऐसे मक्खन की तरह वो कोमल पैर जो है, जब कालिया के सर पे गिर रहे तो उसको क्या लग रहा है, वज्राघात हो रहा है उसके ऊपर, थंडर बोल्ट, स्मैशिंग थंडर बोल्ट। एक जगह कोमल मक्खन की तरह मुलायम, अनुभव हो रहा है वज्राघात का। एक एक वज्राघात के साथ में विष सब निकल के जा रहा है, जो द्वेष का विष है, अहंकार का विष है, सब समाप्त हो रहा है। इसका भी पीछे कहानी है, आपने सुनी नहीं होगी, बताता हूँ। यहाँ पर राधा रानी मालिक है, हाँ स्वामिनी है, कृष्ण को नाच भी वही सिखाती है, नृत्य की गुरु वही है, कृष्ण को मुरली भी उसने सिखाया है। दुनिया भर में कृष्ण मशहूर है मुरलीधर करके, लेकिन सिखाया किसने, राधा रानी ने। तो उनके डांस सिखाया उसने, जानबूझ के वो गलत प्रयोग डालते थे ताकि टीचर के साथ अधिक समय तक रह सके। एनीवेज, तो एक दिन ऐसे बहुत इतराते भगवान आए, ऐसे कदम डालते हुए डांस के रूप में आए। तो सखियों ने बोला इतना क्यों गर्व करते हो, राधा रानी ने तो सिखाया आपको, इतना गर्व उनके सामने गर्व करते हो, टीचर ने सिखाया। तो वो कहते हैं कि ये उन्होंने नहीं सिखाया, ये मेरा खुद का है। तो कहते कैसे खुद का है, ये तो हमने ही सिखाया है। नहीं, ये मेरा खुद का स्टेप्स है। तो इतना अगर गर्व है तो कुछ अद्भुत गति दिखाओ हमको एक बार, ऐसा तुमको लगता है इतना इतरा रहे हो तुम, तो कभी हमको एक अद्भुत नृत्य करके दिखाओ। तभी उन्होंने मन में गांठ मार के रखी थी कि मैं इनको एकदम अद्भुत नृत्य दिखाऊंगा। तभी गोपियां देख रही है और ये भगवान कालिया के सर पर नाच रहे हैं। डांसर कहाँ नाचता है आपके हिसाब से, आपके हिसाब से कहाँ नाचता है, स्टेज पे, जो एकदम स्थिर होता है ना एक जगह पर, आप डांसर को बोलेंगे ये फली जो है ना वो गिर सकते हैं, आप यहाँ पर पैर मत डालना, तो नाच सकता है क्या वो? डांस करते करते नीचे चला जाएगा वो। तो हमेशा डांसर को एक स्थिर भूमि चाहिए, स्थिर प्लेटफॉर्म चाहिए। लेकिन भगवान ने एक अस्थिर प्लेटफॉर्म पर नृत्य करके दिखाया, जिस जिस प्लेटफॉर्म पर कदम रखते ही कदम ही नीचे जा रहे हैं, उसका सर ही नीचे जा रहा है, विष को विरक्त हो रहा है विष से। तो वो अद्भुत दृश्य जो है सब गोपियों ने देखा, भगवान ने उसको पूरा किया। निमित्त क्या था? सीतामा की गेंद ढूंढने गए थे वो, है ना। हर चीज़ में लीला है। अच्छा, भगवान नृत्य कर रहे हैं ना, ऐसा नृत्य कर रहे हैं, सुंदर नृत्य कर रहे हैं कि सब गंधर्व लोग इकट्ठा हो गए ऊपर। किसी ने वाद्य बजाया, किसी ने गाना गाना शुरू किया, किसी ने ताल दिया, किसी ने सुर दिया, किसी ने हर प्रकार से सहायता करने का प्रयास किया। ऐसे वर्णन आता है शास्त्र में कि जिस ताल पे भगवान नृत्य कर रहे थे वो ताल देवता लोग पकड़ नहीं पाए। जो देवता लोग में कैसा होता है मालूम है, जैसे मंकी कैसा होता है, बाय बर्थ गोल्ड मेडलिस्ट जिमनास्ट होता है वो, है ना। आप इस दुनिया के गोल्ड मेडलिस्ट जिमनास्ट को फाइनली उस पर लगा दो तो वो हरा देगा उसको। बचपन से जन्म से ही वो होता है जिमनास्ट विदाउट एनी ट्रेनिंग। एक जाति होती है ना, अपनी अपनी जाति में कैसा होता है, अभी वो चित्ता को बोलेंगे तो जन्म से वो रनर है, वो बोल्ट को भी हरा देगा, हुसैन बोल्ट को, क्योंकि बाय बर्थ ही इज अ रनर, बाय बर्थ मंकी इज अ जिमनास्ट। हाँ, वैसे स्थिति है। तो ये गंधर्व लोक में कैसा होता है, जन्म से ही गायक होते हैं वो, यक्ष लोक की किन्नर लोक किम पुरुष लोक, इसमें सब लोग जन्म से ही गायक वादक नृत्यकारक होते हैं, उनका जन्म ही उनका शरीर ही वैसा होता है। वो लोग भगवान का ताल और सुर पकड़ नहीं पाए और अपना अपना कुछ बजाते रहे, यहाँ कुछ अलग बजता रहा। तो ये सब पुष्पों की वर्षा किया भगवान के ऊपर उन्होंने, जब भगवान नाच कर रहे कालिया को, और फिर कालिया के 100 फनों पर भगवान ने आघात करके सारा विष निकाल दिया उसका। अभी सारे फन उसके मलूल हो गए और उसकी मृत्यु होने ही वाली थी अभी। तब नाग पत्नियां, कालिया की पत्नियां थी बहुत सारी नाग पत्नियां, और नाग बालकों को अपने गोद में लेकर सब भगवान के सामने आई और बहुत स्तुति किया भगवान ने उनका, भगवान की बहुत स्तुति की उन्होंने कि हे भगवान, हमारे पति बहुत द्वेषी हैं, बहुत आसुरी भाव रखते हैं, लेकिन आप उन पर दया कीजिए, हम आपके भक्त हैं, हम आपको चाहती हैं, हम आपके लिए प्रार्थना कर रही हैं कि हमारे पति को आप माफ़ कर दीजिए। जब नाग पत्नियों ने भक्तिपूर्वक भगवान की प्रार्थना की है तो भगवान ने निर्णय लिया कि इसको नहीं मारा जाए, इसको माफ़ किया जाए। लेकिन जब वो अहंकार के विष से, द्वेष के विष से पूर्ण मुक्त हो गया तो वो शुद्ध भक्त बन गया, कंप्लीटली प्योरीफाइड, शुद्ध हो गया वो। उसके मन में भक्ति जागृत हो गई। आप बोले कहाँ से भक्ति जागृत हो गई, इतना विष था तो कहाँ जागृत हो गई भक्ति? तो उसका कारण यह है, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम विदधाति कामान। उपनिषद में वर्णन किया है कि हर एक जीव के अंदर भक्ति छुपी हुई है, हर एक जीव भगवान का अंश है, हर एक जीव भगवान का भक्त है। वो अंदर भक्ति छुपी हुई है, उसके ऊपर आवरण गिरा हुआ है काम वासना का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, द्वेष का, तो वो क्या होता है ना, दिखती नहीं है, दूसरा कुछ दिखता है। जब आप देखोगे अरे राख बनी हुई है, फूंक लगा उसके ऊपर तो क्या होगा, निखारा ज्वाला उत्पन्न होगी, क्योंकि अंदर छुपी हुई है, ढकी हुई है वो राख से। जैसे आप हवा देते हो और राख को निकाल लेते हो तो क्या होता है, अंदर की जो छुपी ज्वाला है आप बाहर से डाल रहे हो क्या ज्वाला अंदर? नहीं डाल रहे, केवल आप ज्वाला के ऊपर जो राख गिरी हुई है उसको हटा रहे हो। वैसे जैसे ही अहंकार का और द्वेष का कवरिंग जो था उसका विषैला वो हट गया तो उसकी अंदर की भक्ति तुरंत जागृत हो गई, वो भी भक्त बन गया। भगवान ने उसको बोला यहाँ से चले जाओ, आपने इस यमुना जी को पूरा विषैला बना दिया है, मुझे इस जगह को शुद्ध करना है, चले जाओ यहाँ से। तो वो कहता है हाथ जोड़कर भगवान को कि मुझे जाने की हिम्मत नहीं हो रही है, जैसे ही बाहर निकलूँगा गरुड़ जी मुझ पर हमला करेंगे, वो वेट कर रहे हैं कब निकलेगा तो मारूंगा उसको, यमुना जी के भय से रुका हुआ है। भगवान कहते हैं अभी तुम्हारे सर के ऊपर मेरे चरण चिन्ह निकले हुए हैं, मैंने नृत्य करके तुम्हारे सर पर परमानेंट मेरे फुटप्रिंट्स बना दिए हैं। अब जब वो गरुड़ जी मेरे भक्त मेरे आपके चरणों सर पर मेरे चरणों के चिन्हों का दर्शन करेगा तो आप पर हमला नहीं करेगा, आपको वंदन करेगा, इसलिए आप निश्चिंत रहो। मेरे चरण चिन्ह जिसके सर पर होते हैं वो निर्भय हो जाता है, उसको दुनिया की कोई शक्ति नहीं मार सकती है। तो फिर कालिया अपने पत्नियों को लेके कहाँ चला गया पता है आपको? एनीबडी हैज एनी आइडिया? वो फिजी आइलैंड में चला गया। फिजी आइलैंड्स किधर है? वो जमैका वेस्ट इंडीज वगैरह है ना, उधर है। आज भी फिजी आइलैंड्स के ऊपर कालिया जी का बहुत भव्य मंदिर है और कालिया जी को वो हम पूजन करते हैं उसका भगवान के रूप में। तो वो कालिया, वो विषैला कालिया नहीं है, भक्त बना हुआ कालिया है, वो वैष्णव कालिया है, परम भक्त कालिया, जिसका परिवर्तन हो गया है। देखो इस चीज में कितनी सार है इस कथा में। अहंकार का जब तक द्वेष, हमारे द्वेष का विष हमारे अंदर जब तक है तो भगवान की प्राप्ति नहीं होती, और इस द्वेष के विष को निकालना बहुत कठिन है। जब भगवान के पैर का प्रहार होता है ना हमारे ऊपर, तो ये विष निकल सकता है। अब बड़ा कष्ट होता है, कालिया ने बड़ा कष्ट सहन किया, लेकिन पूरे कष्ट के बाद में फिर प्रेम का अनुभव किया। दूसरी इसमें सीख हमारे लिए ऐसी है कि जब हमारे संग हमारे भगवान के भक्त होते हैं ना, तो हम अपराधी बनेंगे, लेकिन भक्त संग होंगे तो प्रार्थना करेंगे तो भगवान माफ़ कर देंगे। उसकी पत्नियां भगवान की भक्त थी, वो राक्षसी भाव का था, लेकिन पत्नियों ने प्रार्थना किया, भगवान ने उसको माफ़ कर दिया। इसलिए हम क्या कहते हैं, कालिया दमन कहते हैं। कालिया का वध नहीं किया भगवान ने, बाकी सबों का वध किया, कालिया का दमन किया, केवल उसको सबड्यू किया उन्होंने। तो भक्तों की महिमा है, भक्तों के सहारा जो लेता है ना, वो बड़े बड़े अपराध से भी निकल जाता है, माफ हो जाता है सबा। और गरुड़ जी भी देखो, अभी जिसके चरणों पर भगवान का चरण चिन्ह है, गरुड़ भी उसको सलाम करते हैं उसको। तो भगवान के चरण जो है ना, वो अभय दान देने वाले हैं। जहाँ भगवान के चरण है, जहाँ हमारा आश्रय है, वो सारा परमोच्च भक्ति, सद्गुण संपन्नता सब भगवान के चरणों के पास प्राप्त होती है। सारे तीर्थ धाम, सारी कृपा उनके चरणों में छुपी हुई है। तो भगवान ने देखो, वो गोपियां भी सोच रही हैं, अरे ऋषि मुनि अनंत जब तप करते हैं, उनको भगवान के चरण प्राप्त नहीं होते हैं, अरे ये पापी को कैसे प्राप्त हो रहे हैं। अरे भगवान की अनन्य कृपा है ये, भगवान ने कृपा किया उनके ऊपर, योग्यता ना होते भी कृपा किया और विषय से मुक्त कर दिया उसको। तो वो कालिया घाट हम जाएंगे, हमारे आज के टूर में कालिया घाट है। तो वहाँ पर इतनी कथा करने का वो जगह नहीं है, बहुत भीड़ भाड़ है, हॉर्न है, आवाज़ है, सब कुछ है, मंदिर भी वहाँ पर ज़्यादा है। तो उसकी कथा मैंने आपको यहाँ बता दी, आप जाकर वहाँ पर दर्शन करेंगे तो आपको ये कथा याद करनी है। वहाँ पर उस जगह पर ना जो पेड़ है ना, कदम का पेड़, इस पर भगवान चढ़े हुए थे, उसका भी एक कहानी है। जब ये सृष्टि सब खत्म हो गई थी ना वहाँ पर विष से, तो वो पेड़ फिर भी जीवित था। तो वो कैसे जीवित हो गया, तो जब भी समुद्र मंथन हुआ था ना, समुद्र मंथन पे आप जानते हैं कि भगवान ने सबसे समुद्र का मंथन करवाया, क्षीर सागर का। पहले उसमें से हलाल निकला, फिर नीलकंठ महाराज ने उसको पिया, शिवजी महाराज ने, फिर 14 रत्न निकले, लक्ष्मी जी, उच्चैश्रवा, ऐरावत, सब ऐसे 14 रत्न निकले उसमें से। उसके बाद में अमृत निकला है, तो अमृत भगवान धन्वंतरी निकल के आए, अमृत दिया तो गरुड़ के हाथ में दे दिया उसको। अब गरुड़ उसको लेकर उड़ने लगे, सब दैत्य लोग उसके पीछे भागने लगे। तो उस भागने के चक्र में वो अमृत का पात्र लेकर गरुड़ जी वृंदावन में आए थे, और उन्होंने ये पात्र उस पेड़ पर कुछ समय के लिए रखा था और कुछ बूंदे उस पर डाली थी, ये जानकर कि आगे जाकर द्वापर के अंत में भगवान आएंगे, लीला करेंगे, तो ये वृक्ष का होना जरूरी है उसके लीला में। तो भगवान ने उसको अमृत दिया था, अमृत देकर अमरत्व प्राप्त कर दिया था। एक ही कारण है उसका। दूसरा कारण ये भी बताते हैं कि वो भी मृत हो गया था, लेकिन भगवान के चरण का स्पर्श होते ही फिर उसमें जीवन दान हो गया। भगवान का नेत्रदान जब हुआ, सबको दृष्टि सब पे गिरी, वो भी जीवित हो गए। भगवान का चरण स्पर्श हुआ, ये पेड़ भी जीवित हो गया। दोनों कारण सही है। तो वो पेड़ भी आज विराजमान है, और उस पेड़ में आपको देखना है जाकर बिना भूले, वो जो अमृत का कलश है वो आज भी पेड़ में बना हुआ है, अद्भुत दृश्य है। और आज भी आप देखेंगे, हमारा कोई साइंस ये प्रूव नहीं कर सकता है कि पेड़ जीवित कैसे है, पूरा अंदर से खोखला है, वो इतना बड़ा विशाल है, उसके अंदर हजारों करोड़ों पत्ते लगे हुए हैं, हरियाली से भरा हुआ है, लेकिन अंदर से पूरा खोखला है वो, कंप्लीटली हॉलो इनसाइड, नो बॉटनी, नो बायोलॉजी कैन एक्सप्लेन टू यू हाउ द ट्री इज सर्वाइविंग। ये लीला है, ये भगवान का लीला का चमत्कार है। आप खुद जाके देखिए, अपने आंखों से झांक के देखिए, होल में से क्या दिखता है उसके अंदर, केवल क्या कहते हैं, खोखला ही खोखला है, पूरा वृक्ष खोखला है, लेकिन इतना विशाल वृक्ष आपने कहीं देखा नहीं होगा, इतना विशाल उसका बुंदा है, इतनी ब्रांचेस है, चारों तरफ फैली हुई है, और उसमें वो मटके का पेड़ के लकड़ी के अंदर मटका बना हुआ है, और आप देखेंगे कि वो कोई बना नहीं सकता ऐसा, कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं जो लकड़ी के अंदर, पेड़ के अंदर वो मटके का कार्विंग करेगा। आप खुद जाके दर्शन कीजिए और विश्वास कीजिए। 30 साल में यहाँ पर आ रहा हूँ, लेकिन इसी साल पहली बार 31 साल के बाद में वहाँ के बैठे हुए भक्त ने मुझे दिखाया कि प्रभु जी देखो यहाँ पर अमृत का कलश है। तो मैंने कहा मैं 30 साल से इस जगह पर बैठकर अनेकों कथा किया है, अनेक ग्रुप को लेकर आकर मैंने वहां कथा सुनाई है, लेकिन मुझे दर्शन नहीं हुआ उसका। लेकिन अद्भुत चीज भगवान के विषय में दर्शन करना है तो किसी भक्त की आवश्यकता होती है। बिना भक्त के दिखाए हुए धाम उनको दिख नहीं सकता है। भक्त जब दर्शन कराते हैं तो धाम दिखाई पड़ता है, नहीं तो क्या है, आकाश है, हरियाली है, पेड़ है, लेकिन सौभरी में तपस्या गया कैसे मालूम पड़ेगा? संत ने बताया तो पता चला। तो वैसे मैंने वहाँ पर एक दिन कथा किया, कुछ आई कैम्प के बाद में गया था कथा करने के लिए, मैं लोगों को लेकर गया था, तो कथा मेरी उसको बहुत अच्छी लगी, पुजारी को वहाँ के, बोला प्रभु जी आइए आइए मैं आपको कुछ चीज दिखाता हूँ। वैसे लेके गया, बोला ये देखो गरुड़ जी का अमृत कलश यहाँ पर बैठा हुआ है। मैं बोला मैं प्रभु जी मैं 30 साल से यहाँ पर कभी दर्शन नहीं किया। तब मुझे समझ में आया कि भक्त जब कृपा करता है ना तब धाम का दर्शन होता है, तब धाम प्रकट होता है और धाम के लिए आसक्ति प्रकट होती है। इसलिए कहा गया है कि वृंदावन धाम में या जगन्नाथपुरी में या द्वारका में कहीं भी आपको धाम में जाना है भक्त के संग जाना। डोंट गो एज अ टूरिस्ट, डोंट गो एज अ पिकनिक, हाँ एक मुमुक्षु बनकर जाना, एक याचक बनकर जाना, एक भक्त बनकर जाना और भक्तों के साथ जाना। तो जिन भक्तों ने दर्शन किया है वो आपको दर्शन करा सकते हैं। नहीं तो कैसा है, हमारे बीच में अगर कोई प्रधानमंत्री ग्रीस देश का आके बैठ गया तो आप पहचानेंगे नहीं उसको, जब तक वो नहीं बोलेगा कि मैं ग्रीस का प्रधानमंत्री हूँ। ओह अच्छा अच्छा, ओह नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम। एक आम आदमी तरह आके बैठेगा, कोई एक देहात का आदमी जो नरेंद्र मोदी यहाँ पर घूमते घूमते आएगा तो उसको शायद पहचानेगा नहीं, वो कहाँ, उसके पास टीवी भी नहीं है, कुछ नहीं है उसके पास, तो रोटी है, कहाँ रोटी खा लो बोलेगा वो, बाद में बताएगा अरे प्रधानमंत्री थे, अकेले घूमने आए गए थे यहाँ पर। तो किसी की द्वारा बताने के बाद हमको समझता है कि ये क्या चीज़ है। अभी बंदर के हाथ में आपने हीरा दे दिया तो क्या करेगा वो, लेकिन हीरे की वैल्यू तो इंसान को होती है ना। हनुमान जी को दिया था रत्नों की माला, पता है ना आपको वो कहानी, पता है ना आपको, उसने हर मणि को तोड़ के देखा और फेंक दिया उसको, बोले क्या कर रहे हो, बोले जिसमें राम नहीं है उसमें जो इंटरेस्ट नहीं है कुछ, चाहे हीरा हो या मोती हो, सबको तोड़ के फेंक दिया उसने। तो अपनी अपनी दृष्टि है, अपनी अपनी भावनाएं हैं, लेकिन फिर भी कीमती वस्तु का ज्ञान होए बिना कीमती वस्तु को हम पहचान नहीं सकते। उसी बच्चे के हाथ में हीरा दे दो क्या करेगा वो, खेलेगा और गुम कर देगा, अरे क्या किधर रखा तुमने, किधर रखा, नहीं मैंने कैच कैच खेला तो खिड़की से गिर गया वो नीचे। लेकिन आपके हाथ में देंगे तो आपने डब्बी में, इतनी बड़ी डब्बी रहेगी, इतना हीरा रहेगा, डब्बी इतनी बड़ी रहेगी, इतनी मखमल रहेगी उसके अंदर, इतना वजन रहेगा उसका, ताकि वो छोटी चीज़ गुम ना हो जाए, इसलिए जेब में लगे कि जेब में है वो, डिब्बी बड़ी होती है, हीरा इतना सा होता है। तो वैसे भक्तों की कृपा से ही भगवान की कृपा होती है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात न गति कुतोपि। तो इसलिए आप लोगों को धन्यवाद है, आप लोग आए धाम में आए। तो धाम में गुरुदेव कहते हैं हमारे कि हर क्षण यहाँ पर भगवान के कृपा को याचना करते हुए रहना चाहिए, विच मीन्स ऑलवेज कीप प्रेइंग फॉर द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। यहाँ पर अपनी सारी टोपियाँ उतार के आना चाहिए, जैसे भगवान आए सारी टोपियाँ उतार के आए कि नहीं, वो एक सामान्य व्यक्ति बनकर आए। अगर भगवान अपने धाम में सामान्य व्यक्ति बनकर आए तो हमको ऐड के आने की जरूरत क्या है, होंगे हम लोग बड़े अपने शरीर शहर में जहाँ पर भी काम करते हैं, लेकिन धाम में भगवान के जब आते हैं सब रजोगुण तमोगुण छोड़ के आना चाहिए, भगवान का बनकर आना चाहिए, सामान्य व्यक्ति बनकर आना चाहिए। जितना नम्र बनकर आएंगे उतनी अधिक कृपा मिलेगी, जितना ऐड कराएंगे उतना कृपा नहीं मिलेगी। जब तक वो ऐड के खड़ा था खा लिया उसके एक एक फन को, तब तक लात पड़ी उसके ऊपर, जब विष खाली हो गया उसके ऐंठ का तो कृपा हुई उस पर, जब तक वो ऐंठ के खड़ा था विष के बल्ब के ऊपर फूक के खड़ा था तब तक कृपा नहीं हुई, जब वो विष खाली हो गया उसका तब कृपा हुई उस पर, वो भी पत्नियों की कृपा से कृपा हुई, लेकिन विष खाली होना जरूरी था, जब विष खाली हुआ तो पवित्र हो गए। तो ये हमारी आज की पहली कहानी थी।